नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। गैरी विलियम फ्लेक की पुस्तक द कंप्यूटेशनल ब्यूटी ऑफ नेचर फ्रैक्टल कैओस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और अडेप्टेशन के माध्यम से प्रकृति को समझने वाली कंप्यूटेशनल सोच का परिचय है। यह लोकप्रिय विज्ञान और उन्नत परिचयात्मक पाठ्य पुस्तक के बीच स्थित एक विश्लेषणात्मक कृति है। इसका मूल प्रस्ताव सीधा है, लेकिन उसके परिणाम गहरे हैं। जब अपेक्षाकृत सरल नियम बार बार लागू होते हैं और अनेक घटक एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं, तब अत्यंत जटिल, अनपेक्षित और आकर्षक संरचनाएं उभर सकती है। फ्लेक प्रकृति को केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि परस्पर क्रिया करने वाले एजेंटों की गणनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अणु, कोशिकाएं, जीव और प्रजातियां एजेंट हो सकते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिरक्षा, प्रजनन और विकास उनकी अंतःक्रियाओं के उदाहरण हैं। पुस्तक कंप्यूटर सिमुलेशन को सिद्धांतों की जांच और कल्पना को अनुशासित करने के साधन की तरह प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य किसी एक प्राकृतिक घटना का अंतिम स्पष्टीकरण देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि गणना, नियम, प्रतिपुष्टि और अनुकूलन मिलकर प्राकृतिक जटिलता को कैसे समझने योग्य बनाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सरल पुनरावर्ती नियमों से जटिल पैटर्न का उद्भव। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि जटिलता के लिए हमेशा जटिल निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। कोई नियम यदि अनेक बार लागू हो और हर चरण का परिणाम अगले चरण की स्थिति को प्रभावित करे, तो उससे ऐसी आकृतियां और व्यवहार बन सकते हैं जिन्हें देखकर नियम की सादगी तुरंत दिखाई नहीं देती। फ्लेक इस सिद्धांत को कंप्यूटेशनल प्रयोगों के माध्यम से विकसित करते हैं। कंप्यूटर यहाँ केवल तेज गणना करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि नियमों के दीर्घकालिक परिणाम देखने का प्रयोगशाला उपकरण है। पाठक किसी प्रणाली के प्रारंभिक विन्यास, नियम या सीमा को बदलकर देख सकता है कि कौन से पैटर्न स्थिर रहते हैं, कौन से टूटते हैं और कहाँ नया व्यवहार उभरता है। यह दृष्टि प्राकृतिक व्यवस्था और उसके परिणाम के बीच अंतर स्पष्ट करती है। किसी पेड़ जैसी शाखा, तटरेखा जैसी अनियमित सीमा या जनसंख्या जैसे परिवर्तनशील व्यवहार को केवल अंतिम रूप देखकर समझना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे काम कर रही प्रक्रिया को देखना आवश्यक है। पुस्तक इसी कारण कारण और परिणाम के एक रेखीय मॉडल से आगे जाती है। वह बताती है कि स्थानीय स्तर पर सीमित नियम व्यापक स्तर पर समृद्ध संरचना पैदा कर सकते हैं। साथ ही यह दृष्टिकोण सावधानी भी सिखाता है। किसी सिमुलेशन में सुंदर पैटर्न बन जाना अपने आप में वास्तविक प्रकृति का प्रमाण नहीं है। मॉडल का मूल्य इस बात में है कि वह किन मान्यताओं को स्पष्ट करता है और किन संभावित तंत्रों को जांचने योग्य बनाता है। दूसरा, फ्रैक्टल के जरिए आत्म समानता और पैमाने की समझ। फ्रैक्टल पुस्तक के उन प्रमुख माध्यमों में है जिनसे फ्लेक दिखाते हैं कि आकृति और प्रक्रिया को अलग नहीं किया जा सकता। फ्रैक्टल संरचनाओं में विभिन्न पैमानों पर कुछ रूपात्मक समानता दिखाई दे सकती है, हालांकि वास्तविक प्राकृतिक वस्तुएं गणितीय आदर्श फ्रैक्टल की पूर्ण प्रतिलिपि नहीं होती। इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। गणितीय फ्रैक्टल अक्सर अनंत पुनरावृत्ति और अत्यंत सटीक नियमों से निर्मित होते हैं, जबकि प्रकृति में संसाधन, भौतिक सीमाएं और शोर मौजूद रहते हैं। फिर भी शाखाओं, बादलों, भूगोल और अन्य अनियमित आकृतियों में फ्रैक्टल जैसी विशेषताएं उपयोगी वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक संकेत दे सकती है। फ्लेक फ्रैक्टल को केवल दृश्य आकर्षण के रूप में नहीं रखते, वे यह प्रश्न उठाते हैं कि किसी आकृति की जटिल सीमा को कैसे मापा जाए और क्यों सामान्य लंबाई या क्षेत्रफल जैसी धारणाएं हर स्थिति में पर्याप्त नहीं होती। कंप्यूटर आधारित निर्माण से पाठक यह देख सकता है कि छोटे परिवर्तन किस तरह पूरी आकृति के विकास को बदल देते हैं। इससे पुनरावृत्ति, पैमाना और ज्यामिति के संबंध स्पष्ट होते हैं। पुस्तक की विशेषता यह है कि फ्रैक्टल को अलग गणितीय मनोरंजन की तरह प्रस्तुत करने के बजाय कैओस और जटिल प्रणालियों से जोड़ती है। इस तरह फ्रैक्टल यह समझने का प्रवेश द्वार बनते हैं कि प्राकृतिक अनियमितता भी नियम विहीनता का पर्याय नहीं है। कई बार अनियमित दिखने वाला रूप किसी सुव्यवस्थित जनन प्रक्रिया का परिणाम होता है। तीसरा, कैओस में नियत नियम और प्रारंभिक स्थितियों की संवेदनशीलता। कैओस पर पुस्तक का विचार सामान्य भ्रम को चुनौती देता है कि अनिश्चित दिखने वाला व्यवहार अवश्य ही पूरी तरह यादृच्छिक होगा। कैओटिक प्रणाली के नियम नियत हो सकते हैं, अर्थात एक ही वर्तमान स्थिति से नियम एक निश्चित अगली स्थिति देते हैं। फिर भी प्रारंभिक स्थिति में बहुत छोटा अंतर समय के साथ इतना बढ़ सकता है कि दीर्घकालिक परिणामों का सटीक पूर्वानुमान कठिन हो जाए। फ्लेक इस संवेदनशीलता को कंप्यूटर अन्वेषण के जरिए समझाते हैं, जहां पाठक समीप स्थित प्रारंभिक मानों से शुरू हुई गतियों को अलग होते देख सकता है। इससे भविष्यवाणी की सीमा और नियमों की मौजूदगी के बीच महत्वपूर्ण भेद उभरता है। नियम का होना हर समय उपयोगी पूर्वानुमान की गारंटी नहीं है। पुस्तक कैओस को फ्रैक्टल संरचनाओं, अवस्था, स्थान और गतिशील प्रणालियों के साथ रखकर बताती है कि जटिलता अक्सर स्थिरता और अस्थिरता के बीच के संबंध से पैदा होती है। यह संतुलन कई प्राकृतिक और कृत्रिम प्रणालियों में महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक कठोरता से प्रणाली जड़ या आवर्ती हो सकती है, जबकि अत्यधिक अस्थिरता उपयोगी संरचना को नष्ट कर सकती है। कैओस का अध्ययन इसलिए केवल चौंकाने वाले पैटर्नों का अध्ययन नहीं है, वह मापन की त्रुटि, मॉडल की सीमाओं और नियंत्रण की कठिनाई पर भी विचार मांगता है। फ्लेक नियंत्रण के प्रश्न को शामिल कर यह संकेत देते हैं कि जटिल गतियों को समझना और उन्हें उपयोगी दिशा देना दो अलग लेकिन जुड़े हुए काम हैं। चौथा, सेलुलर ऑटोमेटा और एजेंट अंतःक्रिया से सामूहिक व्यवस्था। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वाले भाग में पुस्तक यह जांचती है कि अनेक सरल घटकों की स्थानीय अंतःक्रियाएं सामूहिक स्तर पर व्यवस्था कैसे पैदा कर सकती है। सेलुलर ऑटोमेटा इस विचार का स्पष्ट उदाहरण है। इनमें प्रत्येक कोशिका सीमित अवस्थाओं और निकटवर्ती कोशिकाओं पर आधारित नियमों के अनुसार बदलती है। कोई केंद्रीय नियंत्रक पूरी आकृति को निर्देशित नहीं करता, फिर भी समय के साथ स्थिर, आवर्ती, जटिल या कैओटिक विन्यास उभर सकते हैं। फ्लेक इस तरह के मॉडलों को प्राकृतिक जटिलता के लिए सोचने के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, न कि प्रकृति की पूर्ण नकल के रूप में। उनका महत्व इस बात में है कि वे स्थानीय नियम और वैश्विक पैटर्न के बीच संबंध को प्रत्यक्ष बनाते हैं। पुस्तक एजेंट आधारित सिमुलेशन, तंत्रिका नेटवर्क, कैदी दुविधा और स्वसंगठन के उदाहरणों के माध्यम से सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संकेत और प्रतिपुष्टि जैसे तंत्रों पर भी ध्यान देती है। इनमें मुख्य प्रश्न यह है कि किसी एजेंट के सीमित निर्णयों से समूह का व्यवहार कैसे बदलता है। उदाहरण के लिए, किसी समूह में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नियम उपयोगी, समन्वय भी पैदा कर सकते हैं और अव्यवस्था भी। फ्लेक का ढांचा यह समझने में मदद करता है कि किसी उभरते पैटर्न को केवल केंद्रीय योजना का परिणाम मान लेना भ्रामक हो सकता है। फिर भी पुस्तक मॉडलिंग की जिम्मेदारी को नकारती नहीं। वास्तविक जैविक या सामाजिक प्रणाली में एजेंटों की क्षमताएं, परिवेश और संबंध बहुत समृद्ध होते हैं। इसलिए सिमुलेशन को व्याख्या, तुलना और प्रश्न निर्माण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अंतिम वास्तविकता के विकल्प के रूप में नहीं। अंत में, अनुकूलन, खोज और विकासात्मक गणना की सीमाएं। अडेप्टेशन के अंतर्गत फ्लेक प्राकृतिक चयन से प्रेरित गणनात्मक विचारों, जेनेटिक एल्गोरिदम और क्लासिफायर सिस्टम्स जैसे तरीकों की चर्चा करते हैं। इनका साझा उद्देश्य किसी स्थिर उत्तर को सीधे लिख देना नहीं है, इसके बजाय संभावित समाधानों की आबादी, चयन, परिवर्तन और प्रतिपुष्टि के जरिए बेहतर कार्य करने वाले विन्यास खोजे जाते हैं। यह ढांचा विकास को केवल जैविक इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि खोज और अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में देखने देता है। किसी समाधान की गुणवत्ता उसके परिवेश या लक्ष्य के अनुसार तय होती है, इसलिए फिटनेस कोई सार्वभौमिक गुण नहीं है। यही बिंदु पुस्तक को तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। समस्या का परिदृश्य बदलने पर पहले सफल नियम अनुपयोगी हो सकते हैं और स्थानीय रूप से अच्छा समाधान वैश्विक रूप से सर्वोत्तम न हो। फ्लेक अनुकूलन को जटिल प्रणालियों के व्यापक प्रश्न से जोड़ते हैं। पर्याप्त विविधता के बिना खोज जल्दी सीमित हो सकती है, लेकिन बहुत अनियंत्रित परिवर्तन उपयोगी संरचना को टिकने नहीं देते। इसीलिए अन्वेषण और स्थिरता के बीच संतुलन आवश्यक है। पुस्तक के संदर्भ में विकासात्मक मॉडल यह दावा नहीं करते कि कंप्यूटर पर चलाया गया चयन वास्तविक जैविक विकास का संपूर्ण विवरण है। वे उन तंत्रों को स्पष्ट करते हैं जिनके द्वारा नियमों, चयन दबावों और अंतःक्रियाओं से अनुकूल व्यवहार उभर सकता है। इस दृष्टि का व्यावहारिक लाभ यह है कि कठिन खोज समस्याओं को एक ही सूत्र से हल करने के बजाय अनुकूलनशील प्रक्रियाओं को डिजाइन और परखने की भाषा मिलती है। निष्कर्ष में, द कंप्यूटेशनल ब्यूटी ऑफ नेचर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कंप्यूटर विज्ञान, गणित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीव विज्ञान, भौतिकी या जटिलता अध्ययन के बीच संबंध समझना चाहते हैं। यह उन प्रोग्रामरों के लिए भी सार्थक है जो सिमुलेशन को केवल कोडिंग अभ्यास नहीं बल्कि वैज्ञानिक तर्क और मॉडल निर्माण के माध्यम के रूप में देखना चाहते हैं। गणित से अपरिचित पाठक को कुछ अवधारणाएं चुनौतीपूर्ण लग सकती है क्योंकि पुस्तक ट्यूरिंग मशीनों और संगणनीयता से लेकर गतिशील प्रणालियों तक जाती है। फिर भी इसकी प्रमुख शक्ति यही है कि यह एक ही घटना को कई कंप्यूटेशनल दृष्टियों से देखने का अवसर देती है। फ्रैक्टल दृश्य रूप और पैमाने का प्रश्न खोलते हैं। कैओस भविष्यवाणी की सीमा दिखाता है। जटिल प्रणालियां स्थानीय अंतःक्रिया से उभरती व्यवस्था को समझाती है और अनुकूलन खोज तथा विकासात्मक परिवर्तन की भाषा देता है। समान विषयों की अनेक पुस्तकों में कोई एक क्षेत्र, जैसे फ्रैक्टल या कैओस, केंद्र में रहता है। फ्लेक की पुस्तक का भेद इन क्षेत्रों को एक साझा बौद्धिक ढांचे में रखने में है। वह कंप्यूटेशन को प्रकृति का केवल रूपक नहीं मानती, बल्कि प्रक्रियाओं को जांचने का अनुशासित तरीका बनाती है। इसका स्थायी लाभ उत्तरों की सूची नहीं बल्कि बेहतर प्रश्न है। कौन से नियम पर्याप्त है, किस पैमाने पर पैटर्न उभरता है, किस सीमा तक मॉडल विश्वसनीय है और कब अनुकूलन वास्तव में उपयोगी व्यवहार पैदा करता है, इसी कारण यह पुस्तक आज भी जटिलता पर गंभीर अध्ययन के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गैरी विलियम फ्लेक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।